उन तस्वीरों में सबके चेहरे खिले हुए थे, जिससे साफ जाहिर था कि वो वक्त उनकी जिंदगी के सबसे खास पलों में से था, जहां वो दिल से मुस्कुराते थे, जहां सब बताते हुए सुभाष जी एक बार फिर उन पलों को जी रहे थे और उनके चेहरे पर खुशी साफ छलक रही थी। वहीं आरवी भी इस दौरान अपनी सभी परेशानियों को भूल चुकी थी और उन यादों का हिस्सा बन चुकी थी। फोटो देखते हुए एक फोटो ऐसी आई जिसमें शान, जो तब शायद 6 साल का रहा होगा, वो अपने पास लेटी बच्ची को बेहद गुस्से में घूर रहा था, जो कोई और नहीं आरवी ही थी। आरवी उस फोटो को देखकर कुछ परेशान सी हो गई और सुभाष जी की तरफ निगाहें घुमाते हुए बोली, डैड, ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? क्या मैंने इनकी कोई चीज ले ली थी या इन्हें परेशान किया था? इतना कहकर उसने फोटो में खुद को देखा, फिर सोचते हुए आगे बोली, पर इस फोटो में तो मैं बहुत छोटी हूँ, फिर मैं कैसे इन्हें तंग कर सकती हूँ? और अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं, जैसे अब मेरे कुछ गलत काम करने पर अपनी आंखों से घूरते हुए मुझे डराने की कोशिश करते हैं? यहाँ आरवी परेशान हो रही थी तो वहाँ सुभाष जी के लबों पर हंसी खिल गई। उन्होंने बमुश्किल अपनी हंसी को रोका और आरवी के परेशान चेहरे को देखकर मुस्कुराकर बोले, आपने उन्हें परेशान नहीं किया था, बल्कि वो बिना आपके कुछ किए ही आपसे परेशान हो गए थे। क्या मतलब? बिना मेरे परेशान किए वो परेशान कैसे हो सकते हैं? आरवी के चेहरे पर उलझन भरे भाव उभर आए। सुभाष जी ने अब मुस्कुराकर आगे कहा, जब आपका जन्म हुआ था तो दोनों परिवारों को एक गुड़िया मिल गई थी और सभी आपको बहुत चाहते थे। जब आप नहीं थी तो सबका सबसे ज्यादा प्यार शान को मिलता था। वो शुरू से ही थोड़े गुस्से के तेज थे तो सब उन्हें बहुत लाड प्यार से रखते थे। अर्जुन से ज्यादा भाभी शान को लाड करती थी, पर आपके आने के बाद सब बदल गया। भाभी आप में व्यस्त रहने लगी तो उन पर कम ध्यान दे पाती थीं और बाकी सबका प्यार भी आपके और उनके बीच बटने लगा था, इसीलिए वो आपसे नाराज ही रहते थे। अर्जुन आपका जिक्र करते तो रूठकर वहां से चले जाते। आपको अपनी बहन भी नहीं मानते थे और बहुत चिढ़ते भी थे आपसे, जिसे देखकर कई बार हम सब हैरान हो जाते थे। जब ये फोटो ली गई थी तब अर्जुन उन्हें कह रहे थे कि आपके साथ फोटो खिंचवाएं, पर शान फोटो खिंचवाने के जगह आपको गुस्से से घूरने लगे और हमने तभी उनकी तस्वीर खींची। आपसे उनका रिश्ता बचपन से ऐसा ही था, वो बेवजह आपसे नाराज होते थे, आप पर गुस्सा भी करते थे, पर जब उन्हें अपनी गलती का एहसास होता तो आपको सॉरी भी बोल देते थे। देखिएगा, इस बार भी जैसे ही उनके दिल से नफरत खत्म होगी और उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा, वो आपसे माफी मांग लेंगे। उनकी बात सुनकर आरवी ने बस हाँ में सर हिला दिया और मन ही मन बोली, तो आप बचपन से ही जलकुकड़े हैं, तब भी मुझसे जलते थे क्योंकि मुझे आपके जगह सबका प्यार मिलने लगा था। और मुझे याद है जब मैं यहाँ आई थी तब भी आप इसी बात पर मुझ पर भड़के रहते थे कि मैंने आपके परिवार को आपसे छीन लिया है। इसका मतलब आपकी आदत ही रही है शुरू से बेवजह अपना गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन मुझ पर निकालने की। पर अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं रह गई हूँ, अब मैं भी पलटकर आपको जवाब दे सकती हूँ। आप चिढ़ते हैं ना मुझसे, तो कोई बात नहीं, इस बार मैं आपके दिल से अपने लिए सारी नाराजगी और नफरत मिटा दूंगी। इस बार मैं आपसे किसी और का प्यार नहीं छीनूंगी, बल्कि आपके दिल और प्यार पर अपना अधिकार कर लूंगी। उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। आरवी ने खुद को हौसला दिया और सुभाष जी की बातें सुनने लगी। काफी देर तक वो यादों के इस खूबसूरत रास्ते पर चलते हुए पुरानी बातों को याद करते रहे। फिर जब सारी फोटोज खत्म हो गईं तो उन्होंने फोन बंद करते हुए कहा, पता है बेटा, ये यादें हमारा सहारा हैं। जब जब हम जिंदगी से हार जाते हैं या हमारे रिश्तों और प्यार पर हमारा विश्वास कमजोर पड़ने लगता है तो हम उन तस्वीरों को देख लेते हैं। कहने को तो हमारा और सावित्री जी का 7 सालों पहले छूट गया, क्यों और कैसे हम नहीं जानते, पर इतना मालूम है कि अब भी वो हैं, कहाँ ये भी नहीं जानते हम, और इतने लाचार हैं कि उन्हें ढूंढने की आखिरी तो क्या पहली कोशिश भी नहीं कर सके हम। लेकिन फिर भी हमें विश्वास है कि अगर हमारा प्यार सच्चा है तो एक ना एक दिन हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हमारा और उनका रिश्ता कुछ ऐसा है कि हम उनसे दूर होकर भी कभी उनसे दूर नहीं जा सके, और वो हमारे पास ना होकर भी हमेशा हमारे साथ रहीं। उनके बिना हमारी जिंदगी की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सालों बीत गए उनसे जुदा हुए, पर रात को जब तक हम एक बार सावित्री जी का चेहरा ना देख लें, उनकी मौजूदगी को महसूस ना कर लें, हमें नींद तक नहीं आती। हमारा रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे सांसों का है धड़कन से। अगर धड़कन थम गई तो सांसें भी बंद हो जाती हैं, और जब तक सांसें चल रही हैं हमारे सीने में मौजूद दिल भी धड़कता रहता है। सुभाष जी खोए हुए से नजर आ रहे थे और उनकी आंखों में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ प्यार नजर आ रहा था। आरवी कुछ पल उन्हें एकटक देखती रही, फिर बुझे स्वर में बोली, इतना प्यार करते हैं आप माँ से? उसकी आवाज सुनकर सुभाष जी ने उसे देखा और फीकी मुस्कान लबों पर सजाते हुए बेहद संजीदगी से बोले, हमारी पहली और आखिरी मोहब्बत है वो, जिन्हें हम अपनी आखिरी सांस चलने तक यूं ही मोहब्बत करते रहेंगे। ऐसा ही प्यार आरवी शान की आंखों में खुद के लिए देखना चाहती थी, पर अफसोस कि शान की आंखों में उसे अपने लिए अब सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत ही देखने को मिलती थी, और जब कभी थोड़ी परवाह नजर आ जाती तो उसे भी वो मतलब और एहसान बना देता था। सुभाष जी की बात सुनकर आरवी सोच में पड़ गई, फिर कुछ देर बाद धीमी सी आवाज में बोली, डैड अगर आपको माँ से इतनी ही मोहब्बत थी तो आपने उन पर विश्वास क्यों नहीं किया? जब आपको पता था कि माँ कभी आपको धोखा नहीं दे सकती तो आपने उस वक्त उन्हें ढूंढकर सच्चाई जानने की कोशिश क्यों नहीं की? आरवी के सवाल ने उनकी उस मुस्कान को भी उनसे छीन लिया। चेहरे पर अजीब सा दर्द और बेबसी छलकने लगी। वो कुछ पल खामोश बैठे रहे, फिर मायूसी और दर्द भरे लहजे में बोले, हमने कभी उन पर पूरी तरह अविश्वास जाहिर नहीं किया क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिल को उन पर विश्वास था कि वो कभी हमारे साथ धोखा नहीं कर सकती, पर उस वक्त जैसी परिस्थिति थी हम चाहकर भी उन पर विश्वास नहीं कर सके। तब सभी सबूत उनके खिलाफ थे, हालात इतने खराब हो चुके थे कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। हम इतने बेबस और लाचार थे कि अपने पैरों पर खड़े तक नहीं हो सकते थे। उस वीडियो ने हमारी हिम्मत के साथ साथ हमें भी तोड़ दिया था, हमारा विश्वास डगमगा गया था और उसी की सजा है कि इतने सालों से हम अपने प्यार को एक नजर देखने तक को तरस रहे हैं और अब शायद हमारी जिंदगी ऐसे ही तन्हा गुजरेगी। आपको पता है बेटा, जब आपका बुरा वक्त आता है तो सबसे पहले वो आपकी मति हर लेता है और आपसे वो काम करवाता है जो आप अगर अपने होश में होते तो कभी नहीं करते। कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हुआ था, पहले वो वीडियो, फिर भाई साहब की बातें, सावित्री जी का हमारे पास न होना, हमारे घर का आग में स्वाहा होना, इन सब ने हमारी बुद्धि को हर लिया था। हम कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं थे। अपने दुख और संताप में हम इस कदर डूब गए थे कि हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। हम उस वक्त बस दिन काट रहे थे, जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थे और मर कर भी मर नहीं सके थे। ये समझ लीजिए कि हमारा शरीर जीवित था पर आत्मा मर चुकी थी, दिमाग एकदम बंद हो गया था। उस वक्त हम कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं थे। जो हमारे सामने आया उसने हमें निष्प्राण कर दिया था। हम होश में तब आए जब हमने अपने इस घर में कदम रखा, तब हमारे दिमाग ने काम करना शुरू किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम चाहकर भी उन्हें ढूंढ नहीं सकते। टू बी कंटिन्यूड।